मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे ज्ञान की सीमा इस विषय पर कुछ बातें करूंगा बकायदे उदाहरण के साथ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर को देख लेते हैं, और वो खबर ये है कि भारत सरकार ने 26 दिसंबर, याद रखिए 25 दिसंबर के बाद जो आता है 26 दिसंबर, उसे वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वीर बाल दिवस, बाल दिवस नहीं, वीर बाल दिवस। इस तिथि को गुरु गोविंद सिंह के जो दो पुत्र थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उत्सर्ग किया था अपने जीवन का, तो उनकी इसी पुण्य स्मृति के रूप में ये वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। क्यों उन्हें अपने जीवन का उत्सर्ग करना पड़ा, बेहतर होगा कि आप थोड़े से इतिहास के पन्नों को पलटें। यह काम मैं जानबूझकर आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, और अब सीधे सीधे आता हूं अपने मुख्य विषय पर। पहली बात जिसके लिए मैं सच में आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा वो ये है कि मैंने फ्राइडे को आप सबसे अपनी एक जो हिचक है, मेरा जो संकोच है, या यूं कह लीजिए कि मेरे अपने सोचने का जो गलत तरीका है, उसको आधार बनाकर आप सबके सामने एक विचार रखा था कि मैं जब इस तरह के विषयों पर बात करता हूं कि कैसे ज्ञान का विवेक तक विस्तार किया जाए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में कैसे अपने को सक्षम बनाया जाए। देखिए, आप जब कोई भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी तैयारी करते हैं, तो हमने सिविल सर्विस की तैयारी को पूरी तरह से किताबों के पढ़ने, नोट्स बनाने, रटने तक सीमित कर दिया है, जो कि उसका एक हिस्सा है लेकिन वो संपूर्ण हिस्सा नहीं है। इस पर मैंने आप लोगों की राय मांगी थी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, जिसके लिए मैंने कहा कि मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा, वो ये कि आप में से बहुतों ने उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए लिखा है कि नहीं नहीं उसी विषय को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, मैंने फैसला किया कि नहीं, ठीक है, हो सकता है कि बहुत से जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उन्हें थोड़ी ये बात ठीक न लगे, लेकिन जरूरी तो है। तो अब मैंने निर्णय यही लिया है कि इसी विषय को मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। इस बीच में जो मेंस की शुरुआत हो गई है उसके 5 पेपर्स आप लोगों को मिल चुके हैं, ऐसे और जनरल स्टडीज के 4 पेपर बाकी अभी होने हैं, और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी के लिए इतना सफिशिएंट है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो आते रहेंगे, सबके अलग अलग होते हैं, और जो जनरल हिंदी और जहां तक जनरल इंग्लिश की बात है, जनरल हिंदी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको आप जनरल लैंग्वेज कह सकते हैं, वो बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि जो 5 पेपर हो चुके हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं। आप सबसे मैंने एक अनुरोध किया था, और वो अनुरोध शायद आप सबको याद हो, मैंने कहा था कि जैसे ही ये पेपर्स हो जाएं, प्लीज आप उन पेपर्स को पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, समय दीजिए। प्लीज आप ये मत समझिए कि यहां जो आप समय दे रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं, यही सबसे सही उपयोग है समय का, क्योंकि यदि आप यहां समय नहीं देंगे तो आगे जो आप पढ़ रहे होंगे ना उसे वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इसे समय दे दिया तो आगे आप जो कुछ भी करेंगे उसका सही तरीके से उपयोग हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इन पेपर्स को पढ़ेंगे जो अभी हुए हैं, तब आपको सही मायने में स्वयं के द्वारा मार्गदर्शन हो सकेगा, स्वयं के द्वारा। और मैंने आप सबसे कहा था कि इसके लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट 1 साल की तैयारी की तो आपको जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस के हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे ये अर्ज करना चाहूंगा, और खासकर ऐसे स्टूडेंट से कि जो 1 साल से तैयारी कर रहे, स्पेशली दूसरों के लिए मनाही नहीं है, प्लीज वो एक काम करें कि जो भी उनके साल भर की तैयारियां रही हैं और अभी जो पेपर्स आए हैं उनके आधार पर मूल्यांकन करें कि जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपको पॉइंट वाइज जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, बीच बीच में भी जो आपको छोटे छोटे आप कह लीजिए उत्प्रेरक वाले या थोड़े से कभी कभी गाइडेंस की भी बात हो जाती है, लेक्चर्स अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सब को आधार बनाकर आप मूल्यांकन कीजिए, और यहां तक कि उसमें डेली ऑडियो लेक्चर को भी आप शामिल कीजिए, जो और भी दूसरी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मंथली करेंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है हर महीने के जो करंट अफेयर्स की जो घटनाएं होती हैं उनकी समरी आपको लगभग 60-70 मिनट की प्रोवाइड की जाती है, उन्हें भी उसमें लेकर के चलें। और प्लीज प्लीज एंड प्लीज मुझे बताएं कि अभी जो पेपर्स आए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, इन पेपर्स को समझने में, प्रश्नों को समझने में यानी कि, और साथ ही साथ समझकर उनका जवाब देने में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है और ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया है ये आपकी कितनी मदद कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ प्लीज आप सब मुझे बताएं। मैं आप सबकी प्रतिक्रियाओं की बहुत ही व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, अब सभी स्टूडेंट के लिए बात करने में जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने एक बात कही थी ज्ञान और दूसरी बात कही थी उसका विवेक तक विस्तार। देखिए, ज्ञान तो हमें कोई देता है, टीचर देते हैं, माता पिता बचपन में देते हैं, समाज देता है, हम जो किताबों में पढ़ते हैं उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सच पूछे तो हम इस ज्ञान को प्राप्त ही इसलिए करते हैं ताकि हम विवेक के लेवल तक पहुंच सकें। ज्ञान और विवेक में फर्क क्या है? ज्ञान संचित है, उसे हम एक्वायर करते हैं, चाहे जिस माध्यम से भी हम उसका संचयन करें हम एक्वायर करते हैं। लेकिन विवेक क्या है? विवेक यह है कि इस ज्ञान का उपयोग करके फिर हम अपने लिए कुछ निकाल पाते हैं, हम निर्णय ले पाते हैं, हम सोच पाते हैं, ओरिजिनली कुछ कर पाते हैं। ओरिजिनली कहने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल कोई एकदम कोई नई चीज ही लेकर के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आपको दूध दे दिया गया हो और अब आप उस दूध को मथ करके उसमें से मक्खन निकाल रहे हैं या घी बना रहे हैं, है तो दूध ही। तो जो ज्ञान है वो यहां दूध का रोल प्ले करता है। और हमारी जो तैयारी करने की जो तकनीकी है कि हम कैसे तैयारी करें, हम कितनी मेहनत करें, कैसे मेहनत करें, वह उस दूध को मथना है, चारण करना है ताकि उसमें से मक्खन निकल सके, उसमें से घी बन सके। तो दोस्तों, ये दोनों में मूलभूत फर्क है। आज मैं आप सबसे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं चाहे जितनी बार भी आप सबसे यह बात कहूं लेकिन इस पर विश्वास करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी बातों पर विश्वास करने के लिए आपको अपने जो पुराने विश्वास हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। और पुराने विश्वासों को तोड़ना, उनसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। मैं अपनी भी जब बात करता हूं और अपने बारे में भी जब सोचता हूं तो लगता है कि उतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक नई चीज चाहिए और एक बड़ी चीज चाहिए जो पुराने तरीके से आपको नहीं मिल सकती, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप पुरानी चीजों को तोड़ करके नई चीजों को स्वीकार करें, या फिर आप पुरानी चीज को सीधे सीधे अपना ही मान करके चलें, यानी कि या तो आपको मानसिकता बदलनी होगी या फिर अपने उद्देश्य को बदलना होगा, बहुत ही साफ है। फ्रेंड्स, आपके सामने सारे पेपर्स आ चुके हैं, राइट? मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और केवल इन प्रश्नों पर विचार करके आप देखिए कि आप इनकी तैयारी करेंगे कैसे, इनके उत्तर आपको किस किताब में मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बैठ करके इनके उत्तर लिखिए और बकायदे नकल मार करके लिखिए। आप किताबें इकट्ठी कर लीजिए, मैगजीन इकट्ठी कर लीजिए, आपको जो जो चीजें चाहिए आप इकट्ठी कर लीजिए, अपने टेबल पर रख लीजिए और इनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। सही बात है कि एक बार आपको ऐसा करना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि इसकी चुनौती क्या है। जब तक आप चुनौतियों को नहीं समझेंगे तब तक उसका मुकाबला करेंगे कैसे, आप बताइए ना। आपको केवल बाघ की, शेर की, चीते की आवाज सुनाई पड़ रही लेकिन आपको चीता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो एक बार कम से कम मुठभेड़ हो जाए उससे, तो आप ऐसा करके देख लीजिए। लीजिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं, मैं ज्यादा प्रश्न तो रखने नहीं जा रहा हूं। पहले आपको निबंध के कुछ विषय बताता हूं। आप सोचिएगा कि ये कहां से मिलेगा, इसकी तैयारी कैसे होगी, लेकिन निबंध तो लिखना है, लिखना ही नहीं है बल्कि अच्छे नंबर लाने हैं अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। हाँ, सेलेक्ट नहीं होना हो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं ज्यादा निबंध पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं, टोटल 8 हैं लेकिन एक दो ही हम देख लेते हैं, उतना ही पर्याप्त होगा, बाकी काम आप कर लीजिएगा। निबंध है आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। दूसरा देखिए जो इससे भी खूबसूरत है, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। यहां संस्कार शब्द का प्रयोग कर दिया ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, मेरी जागरूकता को दर्शाती है। अगर ट्रांसलेट किया गया होता तो बहुत अच्छा था। बाकी निबंध आप पढ़ लीजिएगा, लगभग लगभग इसी तरह के हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद पहले तो समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है, राइट? अब मैं आपके सामने जनरल स्टडीज फर्स्ट का एक क्वेश्चन रख रहा हूं, जो ऊपर से देखने में आपको बहुत सरल लगेगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। ढूंढिए इस उत्तर को कि कहां आपको मिलेगा। एक ही जगह यह मिल सकता है और आप जानते हैं कि वो जगह कौन सी है। व्हाट आर द मेन्स सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया? 250 शब्दों में लिखना है। चलिए अब जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को देख लेते हैं। सेकेंड पेपर तो कमाल का पेपर आया है, लगभग लगभग हर साल यही होता है। और इस प्रश्न को हल करते समय, लिखते समय, भले ही आप ना लिखें, दो 10 मिनट बैठ ही जाइएगा, इत्मीनान से सोच लीजिएगा। जो किताब बहुत जो इसमें पॉपुलर किताब कही जाती है और हर कोई उसका नाम लेता है और वो गलत भी नहीं है, लक्ष्मीकांत जी की किताब कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसे सामने रख लीजिएगा और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। दोस्तों ये करके देखिए और मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, तब आप सही मायने में अपने लिए रास्ता तैयार कर सकेंगे जिस पर अभी आप आगे आपको चलना है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं। इसके लिए दो स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनमें एक है विकास कुमार जिनका गांव है सोरेलाना, जिला बेगूसराय बिहार से, और दूसरी है गीता कुमारी बलिया उत्तर प्रदेश से। विकास और गीता आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। रोहन जोंधले नांदेड़ महाराष्ट्र से, विपिन गौतम, खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, मानस झा दिल्ली से, रजनी राय, रवीना राय खपुरा बिहार से, अभिषेक ठाकुर बीना मध्य प्रदेश से, दीपक शोराण चरखी दादरी हरियाणा से, राहुल चौहान रायपुर छत्तीसगढ़ से, आशुतोष आचार्य होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, कन्हैया लाल पंजाब से और अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।